परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे जीवन में नवीनता ही नवीनता है। हमने भगवान को पहचाना, बाबा ने हमें ढूंढा, ये भी नवीनता हुई। दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में जैसे ही बाबा ने हमें अपना बनाया, हमारे जीवन में नवीनता की एक रूहानी क्रांति आ गई। सब कुछ हमारे लिए नया हो गया। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो भी नया। 2500 साल से सभी लोग अपने अपने धर्म अनुसार या अपनी अपनी पद्धति अनुसार भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान अपर्याप्त रहा। न खुद को पहचान पाए, न बाबा को पहचान पाए, न भगवान को पहचान पाए, अधूरे इसमें ही रह गए और असंतुष्ट रह गए, और हम बाबा मिलते ही तृप्त हो गए। तो ये एक अद्भुत ज्ञान है जिसमें बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया, हमारा परिचय दिया, बाबा को कैसे बाबा को ने उसने खुद का परिचय दिया। इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। कल जब इस टॉपिक पे सोच रही थी तो ये बात जब याद आई तो सोचा कि सच में ये कितनी नई बात है, एकदम नवीनता है ये। अभी तक कभी इसे रियलाइज ही नहीं हुआ था, क्योंकि बाबा को बहुत कॉमन रीति से लेते हैं शायद हम। इसलिए बाबा ने योग भी बताया, जो याद चार सब्जेक्ट जो हमारे हैं, याद भी बताई, वो भी यूनिक है। आज तक जो भी कोई भगवान को याद करता है, थोड़ी बहुत प्राप्तियाँ हुई है, अल्पकाल की प्राप्ति, लेकिन हमारी प्राप्ति अविनाशी प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति कि बाबा को याद करो और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। कितनी बड़ी नवीनता है ये। फिर आते हैं धारणा के सब्जेक्ट पे। धारणा ऐसे बताई है, दुनिया में भी लोग बहुत अच्छी धारणाएं रखते हैं, लेकिन पवित्रता की जो संपूर्ण पवित्रता की धारणा जो बाबा ने बताई, या और भी कई धारणाएं जो बाबा ने बताई हमें, वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये जब धारणाएं हम करते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। लोग तो क्या कहते हैं कि इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है, इंसानियत ही बहुत बड़ा धर्म है। आजकल जो खुद को समाज सुधारक बताते हैं या खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, अच्छे लोग समझते हैं समाज के, वो कहते हैं कि इंसान बनो तो भी बहुत है, क्योंकि इंसान में इंसानियत ही नहीं रही। और भगवान हमें कौड़ी तुल्य से एकदम हीरे तुल्य, मनुष्य से, हम तो उससे भी गए गुजरे थे, बदत्तर बन गए थे, फिर भी बाबा हमें उठाकर, कीचड़ में से उठाकर हमें बना रहे हैं देवता। और ये सबको गारंटी है कि हम देवता बनेंगे ही, चाहे हमारा पद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो 33 करोड़ होंगे वो सभी देवताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। कितना बड़ा, कितनी बड़ी नवीनता है ये, कितना श्रेष्ठ परिवर्तन है। नवीनता अर्थात ही परिवर्तन। और जो सेवा बाबा ने बताई, तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ, सब रीति से सेवा करनी है। जो फ्रीडम फाइटर्स हुए या जिन्होंने समाज सुधारणा लाई है, कुछ कई लोग थे ऐसे, कुछ ऐसे महान राजाएं हो गए थे जिन्होंने अपना सही में प्रजा के लिए या दुनिया के लिए अपना तन मन धन लगाया, श्वास संकल्प भी लगाए, परंतु वो सब अल्पकाल के लिए हो गया। और हमारी जो सेवा है वो सेवा भी यूनिक है। क्यों यूनिक है? लोगों की सेवा कर, युगों की सेवा करते हैं, रूहों की, युगों की, युगों की भी सेवा हो जाती हो। कल्प कल्प का हमारा भाग्य बनता है उसमें, है ना? और किसी का कल्प कल्प है। एक तो 21 जन्मों की राजाएं तो मिलती ही है, एक का पदम गुणा होके मिलता है, और दूसरा कल्प कल्प की बाजी जैसे बाबा कहता है, तो उसमें भी हमारी कमाई हो जाती है, उसका भाग्य बन जाता है। तन भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, उससे भगवान की सेवा करते हैं, तो बाबा इतना बड़ा एवजा देता है। और मन मनसा सेवा, जो किसी को भी इसकी टेक्निक नहीं पता, किसी को भी ये नहीं पता कि मनसा सेवा क्या है, ये बाबा ने आके हमें सिखाया है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य बाबा से शक्ति लेते हैं और अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं सकाश द्वारा। धन द्वारा तो सेवा सबको पता है, थोड़ी कॉमन ही है, लेकिन हमारा धन भी बहुत शुद्ध होता है, इसलिए वो शुद्ध धन से जो भोजन हम बनाते हैं, जो भोजन हम लोगों को कराते हैं, तो उनसे उससे उन लोगों की वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। ये ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा, हालांकि बाबा के भोग से काफ़ी आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोई भाई आए थे, उन्होंने बहुत मतलब ऐसे उधम मचाना चालू किया कि ऐसा है वैसा है, ये ज्ञानी थे बहने, बाद में छोड़ दिया ज्ञान, तो फिर ज्ञानी थे पहले, फिर छोड़ दिया बाबा का ज्ञान, कुछ कारण से कुछ मन मुटाव हुआ, लेकिन बहुत एंटी हो गए, इतने ज़्यादा कि सीधा यहाँ आके पहुँच गए लड़ने के लिए मधुबन आके। लेकिन उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मान ही नहीं रहते। तो अपने यहाँ तो हम लोग खातिरी करते ही है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, तो उनको भी भोजन कराया, भोजन करके ही वो एकदम शांत हो गए। उनको यही बताया था कि ब्रह्मा भोजन है बाबा के घर का, आप मधुबन आए हो तो भोजन करके जाओ। पहले तो रेडी नहीं थे, नहीं मैं तो होटल में खाऊंगा, बाहर रहता हूँ, बाहर आया हूँ, मुझे तो बस मेरा इंसाफ चाहिए, फलाना ढिकना। लेकिन जैसे ही भोजन किया एकदम शांत हो गए, वापस चले गए, दोबारा कभी आए नहीं। क्यों नहीं आए? दोबारा आना नहीं था, इसलिए उनका पार्ट नहीं होगा तो कैसे आएंगे, उन्होंने तो बाबा को छोड़ ही दिया था ना। भोजन से वो शांत हो गए, कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, उनका तो कहना था कि वो जाके मीडिया में देंगे, मीडिया में जाएंगे, फल ये करेंगे, बहुत कुछ उनका प्लानिंग था, और बड़े आदमी थे, मतलब उनका पहुंच भी थी ऐसी, तो वो सब कुछ करने आते, लेकिन भोजन करके ही, ब्रह्मा भोजन जैसे ही किया, शांत हो गए और चले गए। तो ये हमारा धन भी कितना अद्भुत रीति से बाबा यूज करता है। तो हमारा सब कुछ जो है उसमें नवीनता है, श्वास संकल्प से भी हम सेवा करते हैं। तो आज की जो जिस मुरली पर हम ये टॉपिक ले रहे हैं, तो उसमें भी बाबा ने बहुत वंडरफुल बातें कही हैं, नवीनता की बहुत सी बातें हैं। शायद ये पहले जब टॉपिक जब पढ़ा था मैंने, तो इस तरह के संकल्प आए थे, लेकिन बाद में मुरली पढ़ी तो लगा ये तो और ही कुछ है, हमारी शायद सोच ही नहीं पहुंचती जहाँ बाबा जो कहना चाहता है। कितने बार ऐसा ट्राई किया, कितना भी सोच के देखो, वैसी सोच हमारी चल ही नहीं पाती जो बाबा कहना चाहता है। कभी कभार मुरली में टचिंग हो जाती है, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर ऐसा नहीं होता है। तो बाबा यहाँ पे, हाँ, हमारे जो संबंध संपर्क है वो भी एक नवीनता के रीति से हो गए, कि हमारे सारे संबंध शिव बाबा से हुए। भक्ति में भले गायन करते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्हें, तो कुछ कुछ संतों ने इसका अनुभव भी लिया है, लेकिन रेयर। कोई एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर, किसी किसी ने ही ऐसा अनुभव किया कि भगवान को पिता माना, सखा माना, उनकी कोई पत्नी बने, ऐसा कुछ भी है तो सिंगल कोई पर्सन था। लेकिन यहाँ जब हम बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं बाबा के, और हर कोई किसी न संबंधों का अनुभव करता ही है, कभी किसी संबंध का, कभी किसी संबंध का, और सबको बहुत अच्छा अनुभव आता है, तो संबंध संपर्क भी हमारे एकदम नवीन हो गए। बाकी जब हम दुनिया में रहते हैं तो अभी हमें एक कॉन्शियस रहता है कि ये हमारे टेम्पररी संबंध है, किसी न किसी हमारे कार्मिक अकाउंट्स थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी रीति से हम इनके पास आए हैं और ये कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा अविनाशी संबंध है वो किससे है? बाबा से। एक बार गुलजार दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उनको पूछा गया था कि दादी बाबा से कौन से संबंध से ज़्यादा याद करना चाहिए, कि हर समय हर अलग अलग संबंध देना, तो दादी जी ने कहा था कि संबंध, सारे संबंधों का अनुभव लो, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा से बाबा के संबंध में याद करना है, क्योंकि वर्षा बाबा देता है, इसलिए बाबा को बाबा समझ कर सबसे ज़्यादा याद करना है। बाकी समय प्रति समय आपको जिस भी संबंध की आवश्यकता होती है उसका आप भले अनुभव करो। तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई एक संबंध हमें ज़्यादा खींचता है तो हम उसी संबंध को ज़्यादा याद करने जाते हैं, उसी समय को ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं यही संबंध हम बाबा के साथ निभाएंगे, लेकिन नहीं, बाबा को बाबा के रूप में सबसे अधिक याद करना है। तो आज के जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा आज फ्रेंड बन के आए हैं, कितनी अच्छी बात है ना, भगवान हमारा दोस्त, खुदा दोस्त बन के आया है। कहानी तो बहुत अच्छी बनी है खुदा दोस्त की, लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि दोस्त जो होता है ना, बाबा ने बड़ी सुंदर रीति से बोला है कि कैसे आए हैं, मिलने आए हैं, किसको मिलने आए हैं, अपने रूहानी फ्रेंड्स को मिलने आए, कहाँ आए हैं, बगीचे में मिलने आए, कितनी रोमांटिक बात है। तो बाबा हमें हर रीति से बहलाता है, दिल का मीत है बाबा, मन का मीत है, दिल के गीत सुनते हैं, प्रीत की रीति निभाते हैं, कितनी सुंदर बात है, पढ़ते ही या सोचते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं, है ना। तो बाबा आज ये भी एक नवीनता है, जैसे हम याद करते हैं, जैसे आप डायमंड हॉल याद करो तो कितना बड़ा एक, वो बाबा ने कहा ना वो बगीचा है, रूहों का बगीचा है। कैसे बगीचा है? क्योंकि हर प्रकार के वहाँ सुंदर सुंदर फूल हैं, हर एक बाबा के बच्चे में अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण हैं, खुशबू, गुणों की खुशबू है, तो वो कितना सुंदर, बगीचे में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ खुशबू होती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद होता है, और शाम के समय बाबा मिलते हैं, है ना। फ्रेंड्स से भी बाबा ने कहा ना कि बगीचे में मिलते हैं और शाम के समय, वैसे तो फ्रेंड्स को हमेशा साथ में ही रखते हैं, लेकिन एक जस्ट एक एंजॉयमेंट करना है, कुछ अच्छा रखना है, तो ऐसे एंजॉय करने के लिए हम शाम को ही जाते हैं, खास मुलाकात के लिए शाम को जाते। तो बाबा भी देखो हमें हमेशा शाम को मिलते हैं, कितना अच्छा समय होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, कोई दिन भर का, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो माइंड भले रिलैक्स होता है, लेकिन वो होता है कि नहीं उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो सारे दिन का प्लानिंग चलता है, लेकिन शाम को हम एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं कि अभी कुछ नहीं करना है, भोजन करना है, सो जाना है। तो और बाबा जो मन का मीत है, तो फ्रेंड के साथ क्या होता है, हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात हम एकदम ओपन रहते हैं उनके साथ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे बहुत अजीज होते हैं, तो कोई ना कोई एक फ्रेंड ऐसे होते हैं कि बहुत क्लोज होते हैं, तो उनके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ से कोई बात मेरी लीक नहीं होगी या इसका मिसयूज नहीं होगा, तो जब ऐसा होता है तो हम एकदम कुछ भी फ्रैंकली हम उनको सब कुछ कहते हैं, है ना, हमको कोई उस पर फिर टेंशन नहीं आता है। और जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमको समझते भी बहुत अच्छे हैं, जनरली तो हम उम्र के ही फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से, हम जो बातें हम पेरेंट्स से नहीं कह सकते, अपने भाई बहनों से नहीं कह सकते, वो उनको कहते हैं, और वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड जितना अजीज होता है हमारा उतना ही डिटैच होता है। परिवार के जो लोग होते हैं ना उनको हमारे से ना ब्लड रिलेशन के कारण अटैचमेंट होता है, तो वो ना हमारे पे ज़्यादा अधिकार जताते हैं। नहीं नहीं तुमको ऐसा नहीं करना, इससे ये होगा वो होगा, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो बहुत बेटा बेटा करके कुछ गलत भी कर रहे तो भी हमको चला लेते हैं, कोई बात नहीं हो गया तो हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं है। ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो समय पर गाइड करते हैं, गलत है तो भी हमें समझाते हैं, और अगर सही है तो हमको शाबाशी भी देते हैं, आवश्यकता है तो हमें एनकरेज भी करते हैं। तो भगवान तो हमें हर पल गाइड करता है और अपनी कंपनी से हर प्रॉब्लम का सलूशन भी करता है। तो ऐसा हमारा रूहानी फ्रेंड है शिव बाबा, खुदा दोस्त। तो इसकी अनुभूति करना है। कई जगह पर हमको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कारोबार में जब होते हैं ना तो हम जैसे कलीग्स को साथ में रखते हैं तो उस समय फ्रेंड्स भी आवश्यक होते हैं। कारोबार में हमको माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि काम करना होता है तो कोई हो साथ में, तो वही बाबा को बोल के काम करते हैं तो ईजी हो जाता है, है ना। दूसरी बात कि सबके मन में, और एक नवीनता कि सबके मन में एक मेरा बाबा। जब मेरा बाबा ही दिल में है तो और किसी को आने की मार्जिन ही नहीं है। सब कुछ हमारा बाबा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, एक बल एक भरोसा। तो जितना इस बात में हम पक्के होते जाते हैं उतना उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे सामने बातें कुछ भी नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा है कि गिफ्ट देना है, बहुत अच्छी गिफ्ट देना है। कौन सी गिफ्ट? शुभ भावना, शुभ कामना की। जैसे बाबा ने कहा कि बड़े आदमियों के पास जाते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वो गिफ्ट देते हैं। जैसे हम दादियों के पास जाते तो हमें क्या मिलता है? टोली मिलती है, स्लोगन कार्ड मिलता है, हम कितने खुश होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्या वरदान मिला, आपको क्या वरदान मिला, एकदम इंक्विजिटिव हो जाते हैं। और इतना खुशी कि दादी ने मुझे ये वरदान दिया तो हम समझते हैं कि ये मेरा फिक्स हो गया, है ना। ऐसा लगता है कि बिना पुरुषार्थ के ये मुझे प्राप्त हो गया। स्लोगन कार्ड्स कितना हम प्रेम से रखते हैं उसको, कितना खुशी से रखते हैं, वो मिलते ही एकदम खुशी हो जाती कि मेरे को ये स्लोगन कार्ड। क्यों हमको खुशी होती है? क्योंकि उसमें उनकी शुभ भावना, शुभ कामना भरी हुई होती है, उनकी दृष्टि हमारे लिए इतनी ऊंची होती है, वो हमें वो एक रूहानी ताकत देते हैं। तो वो ताकत हमें उस समय, वो पावर हमें उस समय मिलती है दादियों की दृष्टि से, तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो गिफ्ट हो जाती है हमारे लिए। वैसे आप स्लोगन कार्ड देखो तो इट्स ओनली अ कार्ड, छोटा सा, पर उसमें जो दादियां हमें ताकत भर के देती, पावर भर के देती, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है ना? जैसे डॉक्टर्स लोग के पास जाते हैं ना, वो भी गिफ्ट देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, उसमें दवाइयां लिख के देते हैं, वो भी गिफ्ट ही है। उनको भी लगता है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, नहीं नहीं होगा ठीक तो पता है सुनना पड़ेगा, तो अच्छे से अच्छा सोच के वो लिख के देते हैं और वो दवाई लेके हम ठीक भी हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डर से नहीं लिखते, लेकिन उनका उनकी एक्सपर्टाइज होते है ना, वो तो वो अपना ये करते हैं ना, प्रोफेशनल एकदम इसमें वे में करते हैं। तो उनकी भी यही शुभकामना होती है हमेशा कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, है ना, तभी तो उनका नाम होता है ना। पेशेंट ठीक नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा। तो उनसे भी जैसे गिफ्ट मिलते हैं, तो ऐसे हर एक हमारे पास कोई भी आते हैं तो उनको हमें शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देना है। कल का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कल हम सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहे, सडनली नीच शांतिवन जाना पड़ा, पूरा दिन बिजी रहे, शाम रात हो गई, आते आते 7:30 बज गए थे। सोचा था कि क्या करूँ रात को, फिर मुरली पड़ी, क्योंकि परसों शाम को मिली तो सोचा था चलो कल दिन भर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन कल सडनली एकदम काम सेवा आ गई तो चले गए। फिर रात को पढ़ी मुरली तो सोचा कि अभी क्या करें। लेकिन दिन भर में क्या हुआ, जब कारोबार ज़्यादा होता है तो थोड़ा खिटपिट होता है ना, कोई ना कोई ऐसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो कल बार बार एक याद आ रहा था कि हर किसी को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट देना है। ये जब याद आता था ना तो बाकी के संकल्प स्टॉप हो जाते थे। भले एकदम शुभ भावना शुभकामना नहीं निकली, कभी निकली कभी नहीं भी निकली, पर संकल्प स्टॉप हो गए कि हमको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देनी है, इसलिए शांत हो जाओ। तो फिर संकल्प ही नहीं चले। बाबा ने कहा है ना, अगर इतना डीपली हम कोई भी बात पे अगर अटेंशन देते हैं तो उसका कितना बेनिफिट होता है वो पता चलता है। तो अच्छा लगा, कल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सबको शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट देनी है। वैसे भी योग करते हैं हम तब भी हम सकाश देते हैं। कोई निर्बल आत्मा होती है, कोई हमारे पास आते हैं तो उनको हम कितनी शुभ भावना से समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है ना। तो बाबा ने तो एक बार कहा था ना कि चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो तो अंदर से शुभ भावना शुभकामना निकलनी चाहिए। कोई भी आत्मा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल, कोई भी आ रहे जाए उनको सकाश देना है। तो क्या होगा, या शुभ भावना देना है, कोई एक स्वमान में रह के वो शक्ति उनको देनी है, तो क्या होगा, सामने वाली आत्माओं को तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति को भी मिलेगी। बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बन के चलो, धरती पर चल रहे हैं तो धरती पर भी हमारा, हम चलते हैं रहते हैं तो उसको बोझ होता है ना हमारा, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, उसको अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो वो भी हल्की हो जाएगी, पावन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हमें शुभ भावना शुभकामना देनी है, दिल से एक दूसरे को अच्छी भावनाएं देनी है, अच्छी भावना रखनी है, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये गोल्डन गिफ्ट सभी को देनी है। तो ये भी एक नवीनता है, बाबा ने कहा ना कि यही नवीनता है, गोल्डन गिफ्ट देना है सबको, हर एक को, चाहे कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, उसको ये गोल्डन गिफ्ट देनी है। फिर और एक नवीनता उसमें बाबा ने बताई कि श्रृंगार का जो डब्बा, क्या बॉक्स, श्रृंगार का बॉक्स देना है। तो श्रृंगार का बॉक्स क्या है, उसमें बाबा ने सहनशीलता की बात बताई, सहनशीलता का सेट पहनना है। तो कैसे होगा सहनशीलता का सेट हम पहनेंगे, परिस्थिति आई तो उस समय अगर हमें सहन करना है, ये जो बॉक्स होता है ना मेकअप बॉक्स, उसमें ढेर सारी चीज़ें होती है, आई का मेकअप अलग होता है, लिप्स का अलग होता है, फलाना बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही मैंने अभी तक देखा नहीं है पर पता है बॉक्स आशीष भाई उनके भी बॉक्स होते हैं ना, मेडिकल वालों के भी किट होते हैं ना, उसमें सब अलग अलग होता है। तो श्रृंगार बॉक्स होता है या सेट्स होते हैं जो पहनने वाले, है ना, गोल्ड के होते हैं, डायमंड के होते हैं, नेकलेस होता है, कान के टॉप्स होते हैं, बैंगल्स होती है, कुछ कुछ होता है वो। तो ऐसे ही बाबा ने भी हमें यहाँ कंगन पहनाया है ना, तो वो बॉक्स में मतलब एक जैसा सेट होता है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग जब सहनशीलता हमको जहाँ धारण करनी है तो उसके साथ हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ें और आवश्यक है सहनशीलता के साथ, नम्रता, मुख बंद रखना है, और हर्षित मुक्ता, समाना। उस समय हमको समाना भी है, मन को शांत भी रखना है, हलचल में भी नहीं लाना है, और सहनशील रहना है, और कान में भी क्या करना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, रुई डालना है, कौन सी रुई डालना है, मौन की रुई तो यहाँ लगेगी ना, यहाँ नहीं, यहाँ मौन नहीं होता है जी। अच्छा, गुड लिसनर एंड गॉड लिसनर, जो आवश्यक नहीं है वो नहीं सुनना है ना, सहज है इतना। नहीं, हेडफोन लगाने से कुछ नहीं होता है क्योंकि सुनना ही पड़ता है, आप कभी भी किसी के सामने हेडफोन लगा के नहीं बैठ सकते, तो अलग अलग प्रकार के श्रृंगार अलग अलग समय पर करना है, तो ये भी हम लिस्ट निकाल सकते हैं। ये एक नवीनता, पुरुषार्थ में भी एक नवीनता आएगी कि किस समय कौन सा सेट पहनना है। बाबा कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है ना कि सहनशीलता का सेट पहनना, अभी सेट मतलब पूरा उस पर चिंतन चलता है कि सहनशीलता का सेट पहनना अर्थात क्या करना है ना, पवित्रता का सेट पहनना अर्थात क्या करना, तो पूरा उस पर चिंतन चलता है, तो फिर बुद्धि उतनी खुलेगी और फिर हम धारण करने में भी इजी हो जाएंगे। समय पर हमको याद कौन सी, हाँ वैसी ड्रेस पहनना, मैचिंग, सब मैचिंग होता है, सेट मतलब ही वो होता है कि सब मैचिंग होता है। तो वही तो बाबा सिखाता, यही तो नवीनता है, जो भी सिखाया सिखाने वाले तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, प्रैक्टिकल में करना यही नवीनता है ना। तो बाबा ने कहा था कि हमको अभी अंत का समय है, हर एक को बाबा का परिचय देना है ना, हर एक आत्मा तक वो कि भगवान आ चुका है, उससे वर्षा ले, अपना घर, अपने घर वापस जाना है, अपने को जानो, बाबा को जानो, ये सबको सबको बताना है, परिचय देना है। तो कई बार देखे हो कहीं भी जाते हैं तो एकदम गली गलियों में जब जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि ऐसे जगह पे बाबा का परिचय कैसे देंगे, इतने वो अपने इसमें होते वो लोग एकदम कि कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे और कैसे इनको ज्ञान दें, कोई सुनने वाले भी नहीं होते हैं ज्ञान, किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं लगती कई बार। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, सबको बाबा का ज्ञान देना। तो ये नवीनता कैसे करनी है, तो बाबा ने बताया जैसे आदि में सबको साक्षात्कार हुआ था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था ना, स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाता तो सबको पता चलता था, कभी ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था तो कहते थे कि यहाँ आओ, उनको इशारे में ही समझ जाता था कि यहाँ आओ तो आपको श्री कृष्ण मिलेगा, भगवान मिलेगा, है ना, उसी को भगवान समझते थे ना। तो वैसे तो ऐसे ही अभी हमारी वो स्थिति बनानी है कि अपने को साक्षात्कार मूर्त बनाना है। तो उसके लिए जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि पर्दा खोलने को तैयार है, क्या आप रेडी हो? तो अगर हम रेडी नहीं होंगे तो आधे अधूरे होंगे, तो फिर लोगों को कुछ साक्षात्कार नहीं होगा या वैसे ही होगा तो उनको संतुष्टता नहीं होगी, है ना, उनके इष्ट का अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो वो खुश नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे, भगवान को ही कोसेंगे, है ना, कि ये क्या है भगवान। तो एक साक्षात्कार की सेवा का नवीनता हमारे अंदर लानी है। उसके बाद साक्षात्कार की सेवा करने के लिए क्या करना है, पहले हमारे अपने पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने जो भी हमारी गलतियां हैं सबको समाप्त करना है, है ना। हम अपने को, हर एक अपने अपने को जानते हैं, कितना डीप रूट में हमारी कोई कोई कमी कमजोरी चली गई है, तो उनको सबको हमें समाप्त करना। तो बाबा ने कहा कि उसका दशहरा करना है, उसका दशहरा करेंगे तो हम दीपावली मना सकेंगे। शूल रूप में तो हम बहुत दशहरा मनाते हैं, कोई वो लोहड़ी होती तभी भी हम अपनी कमी कमजोरियां डालते हैं, लेकिन क्या हम उस पर इतना विजय प्राप्त करते हैं? नहीं। इतना हमको डीपली खुद को, यही नवीनता लानी है कि इस हफ्ते मुझे अपनी इसी कमजोरी पे विशेष अटेंशन देना है और उसको कैसे मैं रिमूव कर सकूँ, कैसे फिनिश कर सकूँ, तो वो मैं उस पर ओवरकम कर सकती हूँ। तो ये इस प्रकार के अपने पुरुषार्थ में नवीनता लानी है, या किस कैसा गुण धारण करना है, कौन सा गुण धारण करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब बातों की एक नवीनता अपने पुरुषार्थ में लानी है। और एक लास्ट बात कि बाबा ने कहा है लाइट हाउस बनना है, केवल ऐसे नहीं कि दिया बनना है, अपने दिया बनना अर्थात अपने एरिया का या अपने घर का ही कल्याण नहीं करना है, सारे विश्व का करना, और ऐसे भी नहीं कि विश्वों का कल्याण करना है तो विश्व भ्रमण पर निकलना है, नहीं, एक ही जगह पे। ये यूनिक सेवा, बाबा की हर एक बात यूनिक है, एकदम नवीन है। तो एक ही जगह पे बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है, और वो भी लाइट हाउस बनकर। जैसे समुद्र में जो लाइट हाउस होता है उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती है, उनको पता चलता है कि यहाँ तक ही आना है या यहाँ पे कुछ ऑब्स्टैकल है, हमको रास्ता उधर से चेंज करना है। तो एक हमको लाइट हाउस बनके लोगों को मार्गदर्शन करना है, गाइड करना है कि आप सबको यहाँ इस भूमि पर आना है या ये परमात्मा का परिचय आपको यहाँ मिलेगा, अपने भगवान से अपने बाप से यहाँ मिल सकोगे, इससे आपको ये प्राप्ति होगी। और दूसरा, आत्माओं को सर्च लाइट देनी है। सर्च लाइट कितनी पावरफुल होती है ना एकदम, तो वो सर्च लाइट हम देंगे तो आत्माओं में शक्ति आएगी, है ना। केवल लाइट के सामने भी हम खड़े रहते हैं ना तो हमें उसकी वो पावर महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, शक्ति महसूस होती है ना। ठंडी मान लो लग रही है तो हम सोचते हैं कि लाइट के नीचे भी थोड़ा खड़े रहे ना तो एकदम वो हीट महसूस होती उसकी। तो ऐसे ही हीट मतलब लाइट अर्थात ही पावर शक्ति, तो वो हमें सर्च लाइट देनी है, बाबा से सारी शक्तियाँ लेके अब सभी आत्माओं को देनी है। और ये परमधाम में ये काम बहुत अच्छा हो सकता है, वहाँ सभी आत्माओं को इमर्ज करना और वही बाबा से शक्ति लेके सबको देना। तो वो जो सर्च लाइट आत्माओं को मिलेगी तो उनके अंदर शक्ति आ जाएगी, वो भी अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे, बाबा का बन सकेंगे और अपना वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार की नवीनता अपने अंदर लानी है। ओम शांति।